हो जाएगा कि मैं वैष्णव हो गया, उसके दिन गिर जाएगा। इसलिए बहुत करते हैं
और
गिरधारी श्याम बनवारी
मेरो राधा गिरधारी
Come on.
श्री राधे
जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे सचिनंदन गौर हरि की पति पावन नित्यानंद प्रभु की
जय
श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी
की जय
ब्रज मंडल की जय भूमि की
जय
माँ के भक्तों की
जय
गौड़ मंडल की
जय
नासी धाम की
जय
भक्तों की जय पूरी धाम की
जय
पूरी के भक्तों की
जय
और यहाँ के अनुष्ठान
वैंकूवर
वैंकूवर के परम भक्तों की
जय
भक्तानियों की
जय
कृष्ण यूज टू स्पीक दैट लैंग्वेज. इसलिए कृष्ण भक्ति में ब्रज की भावना में ब्रज के की भाषा में जो रस है वो किसी भी भाषा में नहीं है. मैया मुझे माखन भावे. कितना सुंदर था, कितना सुंदर बोलता है. मैं बहुत प्रसन्न हूं. ब्रज से आया, कुछ ब्रज की मधुरता को देने के लिए. ब्रजरस माधुरी, ब्रजरस माधुरी वह छलकता हुआ प्रेम है जो सबके हृदय को अपने प्रेम से भर देगा. किंतु यह अधिकारी कम है. विशेष के इधर में बहुत दिनों से अंग्रेजी बोलते बोलते थक गया हूं. अंग्रेजी मुझको आती भी नहीं, मेरी अंग्रेजी लंगड़ी है. कभी लोग सुनते हैं तो आज मैं कुछ हिंदी में बोलूंगा और इसके बाद में ये हमारे कौन प्रभु
नारद मुनि प्रभु
नारद मुनि ये विश्व की सभी खबरों को रखने वाले हैं और इनसे बच करके रहेंगे.
ऐसा लड़ाई से लगाते हैं नारद मुनि,
ये स्त्री और पुरुषों में भी लड़ाई लगाते हैं. इसलिए नारद जी से जरा बच करके रहना. किंतु नारद जी यथार्थ में परम भक्त हैं. उनके जैसा विश्व में कोई भी भक्त नहीं. नारद जी की ही दो चार बातों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं. मैं थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊंगा, जिसको ये बीच में ये बोल देंगे. एक साथ तो सबको बोलना मुश्किल है. अंग्रेजी में मेरे भावों को बोलना भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन. इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा सा बदला. सबसे पहले इस चीज को मैं बतलाना चाहूंगा कि भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति एक लता के समान है. भगवत भक्ति लाइक इज क्रीपर. किंतु वह जो लता है भक्ति की लता, वो बीज से होती है और गुरु उस बीज को अच्छे हृदय में उसको रोपण करता है. वो बीज क्या है? अपने संग से, अपनी कथाओं से संसारी लोगों को जो संसार में मत्त है, खाओ पियो और मौज करो, इसमें जो प्रमत्त है उनको फुर्सत नहीं है. किंतु अपनी बड़ी मीठी हरी कथाओं से उनके अंदर में यह भाव भर देते हैं. संसार की समस्त वस्तुओं को पाने के बाद भी सारे वैभव और जो कुछ चाहते हो सभी कुछ मिलने पर भी तुम जीवन में सुखी नहीं रह सकता और इसका एक काना कौड़ी भी तुम लेकर के नहीं जाएगा. इस शरीर को भी छोड़ देना पड़ेगा और जो तुम्हारे अपने हैं, स्त्री परिवार पुत्र धन संपत्ति जो जीवन भर में इकट्ठा किया, वो सभी छोड़ देना पड़ेगा. अंत में खाली हाथ लौटेगा दुखी होकर के लौटेगा। जिसके लिए तुमने कमाई किया वो ले लेंगे और नहीं जबरदस्ती ले लेंगे और तुम्हारे देखते देखते तुम चला जाएगा और वो सब चीजें रह जाएंगे, इसलिए सुखी नहीं होगा। इसे तू कृष्ण का भजन कर, इसे तुम इस जीवन में और अगले जीवन में और अंत तक तुम सुखी रहेगा और भगवान को प्राप्त करके इस जगत में नहीं आना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण का भजन कर। गीता की कथाओं को जो मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बुढ़ापा जरूर आएगी और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको रोग नहीं झरेगा और प्रॉब्लम जिसको नहीं होगी, जरूर यह सब चीजें आने को बाध्य हैं। इसलिए भागवत की कथा सुना करके, पुराणों की कथा सुना करके, रामायण की कथा सुना करके, उसमें रावण और कुंभकर्ण का, हिरण्यकश्यप का चरित्र और प्रहलाद चरित्र और कंस इत्यादि का चरित्र, इधर कृष्ण और गोपियों का चरित्र सुना करके ये बतलाते हैं उनकी क्या हुई गति। रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप उनकी सोने की लंका कहाँ गई, ये सब कहाँ चीजें गई। हिरण्यकश्यप जो आकाश में नहीं मरे, पताल में नहीं मरे, किसी से नहीं मरे, वो कहाँ गया, एक क्षण में मृत्यु हो गई। कंस की क्या दशा हुई। और देखो प्रहलाद जी को, नारद जी को, व्यास जी का चरित्र पढ़ो, जगाई मधाई जी का देखो, इकट्ठी कर लो जो हमको भगवान का भजन करने से ही सुख होगा। ये वासना भक्तों के हृदय में, लोगों के हृदय में देते हैं, यही भक्ति लता का बीज है और श्रद्धा उसका ऊपर का है। क्या चीज, उसके लक्षण केवल है, सिम्टम। तो गुरु इस चीज को देता है, आप थोड़ा सा बतला दीजिए नहीं तो फिर ये लोग मोर देन मी।
नारद जी आवाज से छोड़ दिया, नारद जी आवाज से छोड़
दिया।
तो बिना गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज नहीं मिलता। अब थोड़ा सा गुरु जी के संबंध में बतला रहा हूं मैं, पहले उदाहरण के द्वारा सर्व सहज शब्दों में बतलाऊंगा, कोई फिलॉसफी इत्यादि नहीं ले आऊंगा, बहुत सर्व सहज रूपों में। एक समय एक अलभ्य नाम का एक लड़का, भीम का लड़का, द्रोणाचार्य के पास में गया। जो आप अर्जुन को, भीम को, दुर्योधन को और सब बच्चों को आप सिखला रहे हैं धनुर्विद्या, मैं भी आपको गुरु बना करके धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। उन्होंने कहा किसने सीखना चाहता है, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता हूं, यदि समय हमारे समान कोई न रहे, मैं तुम्हें नहीं सिखलाऊंगा, तुम लौट जाओ। उसके स्वभाव को, चरित्र को उन्होंने देखा, बेजा भक्ति उसमें नहीं है, भक्ति नहीं चाहता ये अर्जुन का बराबरी करना चाहता है। ये हवा आ रही है तुमसे,
पंखा
तो हमारी तरफ में न करके दूसरी तरफ, उसको थोड़ा सा चेंज कर,
डायरेक्शन चेंज कर दीजिए,
बस कितना ही चीज। उन्होंने उसका शील स्वभाव चरित्र और उसके इस धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या है, वो देखा ये तो कृष्ण का विरोधी है, भक्तों का विरोधी है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इस विद्या को नहीं सिखा, जिसे जगत का कल्याण होगा उसको सिखलाओ, जो धीर हो, सहिष्णु हो, जगत का कल्याण कर सकता है उसको सिखाओ। उन्होंने उसको मना कर दिया, वो चला गया और जंगल में जाकर के उनकी मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके उस मूर्ति से ही सीखने लगा, उनको प्रणाम करता पुष्प चरणों में दे करके धनुर्वेद का अभ्यास करता। एक दिन कौरव और पांडवों के बच्चों को लेकर गुरु द्रोणाचार्य जंगल में गए, उसी जंगल में गए, बाई चांस चले गए और वहां जाकर जा रहे थे, उनके साथ में कुत्ता था, कुत्ते ने कुछ आग पाकर के भौंकना आरंभ किया और साथ ही साथ कुछ बाण उसके मुख में ऐसे भर गए जो कहीं उसको खरोंच नहीं आई, कहीं भी नहीं कुछ लगा और उसका मुख पूरा बंद हो गया, कोई भौंक नहीं सुना। महाराज उन्होंने देखा द्रोणाचार्य और अर्जुन ने सोचा वाह ये तो अद्भुत कला, इसको कहीं भी चोट नहीं लगी, खरोंच नहीं आई, रक्त नहीं निकला और बाण से मुख भर गया, ये बोल नहीं सका, ये कौन ऐसा करती है। आगे बढ़े देखा एक काला युवक बहुत बलिष्ठ हाथ में धनुष बाण लेकर के और द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने इस प्रकार से प्रणाम कर रहा है। द्रोणाचार्य ने तुम कौन है? मेरा नाम एकलव्य है। ये बाण किसने छोड़ा? मैंने छोड़ा। वाह तुम्हारी बाण विद्या तो बड़ी और बहुत अद्भुत है, तेरा गुरु कौन है? मेरे गुरु द्रोणाचार्य आप हैं। मैं गुरु तुम्हारा? हाँ। तो तुमने इतना बाण बात सीख लिया और हमको दक्षिणा कुछ नहीं दी? हाँ गुरु जी दक्षिणा अभी तक नहीं दी, मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो ठीक है तुम दक्षिणा दो, तुम तो पारंगत हो गया, बहुत कुछ अस्त्र जान लिया, कुछ हमको दो दक्षिणा, आप जो कुछ कहेंगे वही दूंगा, जो कुछ मांगेंगे वही देगा। कहा तो अपना दाहिना हाथ का ये अंगुली काट करके हमको दे दो अभी तुरंत, बस उसने इधर नहीं देखा ना आओ ना आओ ना पीछे ना आ जाए, बस अपनी तलवार निकाली इधर से खच काटा और किसी प्लेट में लेकर के पत्ते में रख करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। किस लिए काटा? ये तो जगत में अनर्थ पैदा करेगा, ये भक्तों से लड़ाई करेगा, भक्तों को कष्ट देगा और जगत के लिए ये बड़ा हानिकारक होगा। यदि इसका ये नहीं लेता हूं तो अर्जुन से लड़ेगा, कभी भीम से लड़ेगा, कभी कृष्ण से लड़ेगा, यदुवंशों से लड़ेगा, भक्तों से लड़ेगा, बड़ा ये तो अनिति करेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि वो बड़ा भारी गुरु भक्त था एकलव्य, किंतु यथार्थ में वो एकलव्य भक्त नहीं था, गुरु भक्त नहीं था, वो गुरु का द्रोही था। भक्त किसको कहते हैं? गुरु सेवक। गुरु जो चाहते हैं वैसा करने का नाम है भक्त। गुरु जी को कहना नहीं पड़े कुछ और उनका सेवक बिना उनसे पूछे हुए उनके मन की भावना का देकर के वैसा ही करेगा जैसा गुरु कहते हैं, ये तो गुरु का शिष्य का लक्षण है। और यदि गुरु कहते हैं कि तुम ये मत करो, वही करता है चाहे जितना भी ऊंचा काम करे, वो गुरु का द्रोही है। इसलिए एकलव्य को कहीं भी भागवत में रामायण में पुराण में कहीं भी उसको गुरु सेवक नहीं कहा गया, गुरु का द्रोही कहा गया। किंतु लोग नहीं समझते हैं ये कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग के वजह से उनकी बुद्धि बड़ी फूल मोटी होती है, ले उनके समझ में नहीं आता। गुरु जी ने कहा कि वहां जाकर के कुछ सेवा करो, कहा मैं यहां नहीं, मैं वहां पर सेवा करूंगा, इससे अच्छी सेवा, बस वो काम छोड़ करके चला। गुरु जी ने कहा कि हमको हवे की जरूरत है, पंखा करो, कहा नहीं पहले पानी पीजिए, मैं मुझको ठंडा पानी दीजिए। गुरु जी बहुत मुश्किल से मैंने इसको अच्छी तरह से बर्फ दे करके बनाया, मुझको बर्फ नहीं चाहिए। नहीं गुरु जी आप ये सेवा नहीं है, सेवा क्या है? गुरु के हृदय की बात को समझ करके वैसे ही करने का नाम। इसलिए एकलव्य कभी भी गुरु सेवक नहीं है। पीछे से क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही उसको बड़ा क्रोध हुआ, वो कृष्ण से अर्जुन से लड़ने के लिए आया तो कृष्ण ने अपने चक्र से उसे काट कर फेंक दिया। कभी भी ऐसा कर्म मार्ग का व्यक्ति वो न तो गुरु है और न तो है। इसलिए कर्म मार्ग से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए चीज को समझना चाहिए। हारमोनियम का बजाने वाला हमारा ट्यूटर किसी तरह से हो सकता है, जाति शिक्षा को देने वाला प्रोफेसर और ये सब लोग हो सकते हैं, क्योंकि से हमारा कल्याण भी कुछ नहीं होने का। इसलिए ऐसे हमें गुरु की जरूरत नहीं है, ऐसे शिष्य की जरूरत नहीं जो कर्मवान है। द्रोणाचार्य गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ भक्त भी हैं, किंतु कौरवों का पक्ष क्यों लिया? अर्जुन को सिखलाया, अर्जुन के विरुद्ध में वो लड़े, वो जानते थे ये कृष्ण का परम भक्त है और ये दुर्नीति चल रहे हैं कौरव लोग, कभी क्यों किया? ऐसे गुरु से हमारा कल्याण, गुरु हैं वो ठीक, इतर विशेष से कृष्ण के भक्त हैं ये बात तो ठीक है, किंतु फिर भी कुछ इतनी। इसलिए ऐसे गुरु शिष्य का संबंध हम लोग नहीं चाह करके, हम लोग ऐसा चाह जो कृष्ण भक्ति हमको दे सके वो गुरु गुरु है। जो गुरु नहीं भक्त ने भक्ति का ये नहीं दे सकता है, वो प्रेम की वासना नहीं दे सकता है, बीज नहीं दे सकता है कि कृष्ण का भजन करने से ही संसार में सब कुछ करना हो जाएगा, ये चीज नहीं देता है, तो वो गुरु हजार विद्वान हो, हजार ये धनुष बाण सीखने वाला हो, हजार हो, सब वो गुरु नहीं है। थोड़ा सा बतला दिया। कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया, हमें बाण विद्या सिखला दीजिए। उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया, किस लिए सीखना चाहता हूं? तो अर्जुन को हराने के लिए, मैं तुम्हें धनुष बाण नहीं सिखलाऊंगा। परशुराम के पास में गया और परशुराम से उन्होंने छल किया और कहा, उन्होंने पूछा कि तुम किसका लड़का है? उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। किस लिए सीखना चाहता है? उन्होंने एकदम सीधे सीधे कहा कि हम वीर बनने के लिए सीखना चाहते हैं और भी उनको हराएंगे। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा है, ठीक, सेवा करने लगा, उसे धनुष बाण और भी परमार्थ की शिक्षा देने लगे, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार थे और भक्त भी थे। कुछ दिन के बाद में जब उसकी बाण शिक्षा समाप्त हो गई तो उन्होंने समझ लिया कि ये भक्त नहीं है, ये छिपा हुआ दुष्ट व्यक्ति है, ये दुर्योधन की सहायता करने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए ये शिक्षा कर रहा है। तो उन्होंने कहा जब बेटा आज मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं, उसके जैसे वो बैठा हुआ था कर्ण, उसके गोदी में सिर रख करके सो गए और एक लाल कीड़ा निकला, ऊपर से छेद करता हुआ इधर निकल गया और रक्त की धारा गिरने लगी और उनके सिर में लगी। उनका भाई कहां से ये क्या आ रहा है, ठंडी ठंडी या गर्म गर्म? देखा ये रक्त रक्त कहां से आया? देखा जी उसके यहाँ पर छेद हो गया है कीड़े ने और रक्त आ रहा है। अजय अरे उसे बतला भी किसका लड़का है, अभी बतलाएगा नहीं तो अभी अभी संपात देते, अभी मर जाएगा, जल्दी बतला। तो वो डर गया, बोला जी मैं एक नाव चलाने वाले उसका मैं बेटा हूं, सुत पुत्र। सुन पाए मैं तो झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, जाओ तेरी विद्या सब तू भूल जाएगा, अभी नहीं भूलेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब भूलेगा। चला गया, ये भी शिष्य नहीं और ये धनुर्विद्या सिखलाना भी गुरु का काम नहीं। यदि परशुराम उसके हृदय को साफ करके और भगवत भक्ति बैठा देते तो ये धनुष बाण भी छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ देता, उसकी भक्ति हो जाती। इसलिए ये गुरु का भी और शिष्य का भी जोड़ा है ये भी ठीक नहीं। ये संसार की विद्याएं हैं, इससे हमारा कुछ आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अंत में हुआ क्या, महाभारत में जब युद्ध होने लगा अर्जुन के साथ में, तो उसका रथ का पहिया जमीन में धस गया और जब निकालने के लिए चला तो कृष्ण ने कहा जी मारो इसको अभी। उन्होंने कहा जब मारे कैसे, अभी तो लड़ नहीं रहा है, इसको तो मारना उचित नहीं। मैं कहने लगा अरे जल्दी मैं कहता हूं कर, अभिमन्यु को कैसे धर्म युद्ध में मारा, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने से ये धर्म है, भीम को विष खिलाया तुम्हारा राज्य ले लिया, उसमें तुमको याद नहीं है मैं जो ऐसा कहता हूँ ऐसा कर, अभी प्रतिज्ञा किया था ये सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ माम एक सम, तुमने कहा था ना, अतः तो कहा बस ठीक। धनुष अब चढ़ाया, अर्जुन ने उनको मारने के लिए कर्ण ने कहा अभी वीर की बात नहीं, ऐसा मत लड़ो, मैं अभी अस्त्र शस्त्र ले लूं, हमारा अपना चक्का निकाल लूं तब लड़ना, तो अभिमन्यु के समय में तुम्हारा ये धर्म कहां था। और उस समय जबकि ब्रह्मास्त्र निकाला तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, सब अस्त्र शस्त्र धरे के रह गए, कुछ भी नहीं कर सका, उन्होंने निकाला बाण से खत्म कर दिया। कृष्ण जो कहते हैं ये करना, ये शिष्य का गुरु का काम है, जो कृष्ण की इच्छा को पूर्ण नहीं करते वो यथार्थ में न तो गुरु है और न, इसलिए कर्ण इस तरह से, इसलिए ये भी सेवक नहीं है सच्चा। और बण विद्या भी या कोच, ये संसार की कोई विद्या भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती है जीवन और मरण से, इस चीज को याद रखनी चाहिए। संक्षेप में बोल दीजिए, तो वह थोड़ा सा अब चलिए, ये तो कर्म मार्ग के हुए दो गुरु, बट एक्चुअल दे आर नॉट गुरु। अब उपनिषद में चले, अरुणी नाम का एक छोटा सा बच्चा था, ब्राह्मण बालक, उपाध्यम
धूम
उनके गुरुजी का नाम था, वो गुरुजी के पास में, गुरुजी मुझे वेदों का अध्ययन कराएं और ब्रह्म विद्या दें। उन्होंने कहा ठीक, पहले तुम हमारी गायों को चराओ और घर का काम करो, और तुम्हारी गुवानी जैसा आदेश देती है वैसा करो। 12 वर्ष तक रह करके यह सेवा करने लगा। एक दिन गुरु जी ने कहा बेटा बड़ी जोर से वर्षा हो रही है, अब रात होने को है, जल्दी से जाओ मेड़ को बांध दो ऐसे जैसे पानी न निकल करके दूसरी जगह चला जाए, धान की खेती करनी है इसलिए पानी की आवश्यकता है, तुम कुदाल ले जाओ और लेकर के मिट्टी से उसको ऊंचा कर दो जो पानी न निकल जाए। वो एकदम प्यारे का दिन अब रात होने आ रही है, वर्षा भी मूसलाधार वर्षा हो रही, गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए चला गया, रात भर मिट्टी काट करके देता रहा और वो पानी बह जाता था। अंत में उन्होंने कुदाल को फेंक दिया और अपने आप वहीं पर मेड़ पर सो गया, जो पानी मिल गया, ठंड से सिदूर करके अब मरने मरने को हो गया। और इधर में सवेरा हुआ, उनका जब बेटा हमारा वो शिष्य आया नहीं, अरुणी अरुणी तू कहाँ है, तू कहाँ है, पानी चारों तरफ में भरा पड़ा है। बड़े क्षीण स्वर से गुरु जी ने यहाँ पर लेटा है, क्यों लेटा है गुरु जी, मैंने मिट्टी डाली किंतु मिट्टी बह जाती थी इसलिए मैं खुद ही सो गया, देखा जब थोड़ी देर नहीं आता तो मर जाता, अरे उठो बेटा उठो जाओ, समस्त वेद वेदांत उपनिषद जितना ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो अभी तुरंत हो जाए, मंगलम भवति। और उसको वेद वेदांत उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, ये गुरु गुरु है ना, देखा पक्का दिया, सिखलाने की कोई जरूरत नहीं है, 64-60 कलाएं वेद उपनिषद इत्यादि की होती है, ब्रह्म ज्ञान, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म का एक पार्ट और पार्षद, जितने भी जीव के जगत के हैं ये सब ब्रह्म से संबंधित हैं, और सारी विद्याएं आप जाओ तुम अपना इनका वेदों का प्रचार करो और इसका अभ्यास करो, कृतकृतार्थ होकर के वो अपने घर पर चला गया। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, किंतु कृष्ण ने कहा है वेदों के लिए त्रैगुण्य विषया वेदा न त्रिगुण्यो भवार्जुन, उपनिषद शुद्ध भक्ति का उपदेश नहीं था। उसमें ऐसी संभावना आज अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलुविदम ब्रह्म सत्तम असि, तुम भी वही हो मैं भी ब्रह्म हूं, इसे मुक्ति तो मिल जाएगी। किस मुक्ति में आनंद नहीं होगा, कृष्ण की सेवा नहीं मिल सकेगी। इसलिए गुरु तो हैं उपनिषदों का ज्ञान देने वाले, किंतु हमको ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करते हैं, महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, किंतु इस ब्रह्म ज्ञान से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। है वेदों के ये बड़े भारी ज्ञाता है, किंतु हमको ऐसे गुरु की जरूरत है। हमको कैसे गुरु की जरूरत है, हम पीछे बतलाऊंगा। इसलिए शुरू करना चाहिए, अन्यथा आंख अंधे बने रह जाएंगे। दो आंगुल ऊपर उठिए। अब चले रामायण के समय में, नारद जी कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कुछ आदमी मरे पड़े हैं। भाई ये आदमी को कौन मारा, आगे और गया, देखा जे मोटा छोटा एक व्यास का व्यक्ति जिसका नाम वाल्मीकि था, रत्नाकर दस्यु डकैत, सबको मार करके और उनका धन दे देता था और उनको मार डालता था। इनको देखते हैं तुम इधर क्यों आया, और उठाया मारने के लिए अपना मुद्गर, उन्होंने ऐसे कर दिया, बस वहीं का वहीं रुक गया, हाथ नहीं चला। तो मुझे किस लिए मारना चाहता है, अब तो रुपये पैसे में ले लूंगा आपका धन, अरे ये पाप होगा, मरेगा तू, जाकर के अपनी बीवी से पूछ, अपने बाप से पूछ, अपनी मैया से पूछ, जो ये जो पाप कर रहा है इसका फल वो लोग लेंगे कि नहीं। अरे तुम हमको मूर्ख बना करके और भागना चाहता है, अरे हमें बांध दो पेड़। बस उसका हाथ पैर जकड़ करके पेड़ों में बांध लिया और घर में गया, अपनी पत्नी से पूछा, जो ये मैं मारता हूं तो इसमें पाप लगता है, तो इसका पाप का आधा भाग तो तू लेगी। मैं नहीं लेती, हमारे पिता ने तुम्हारे हाथ में हमको दिया है, तुम्हारा पालन पोषण हमारा कर्तव्य है, और हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो कुछ लाएगा तुमको खिलाएंगे, पाप पुण्य से हमारा मतलब नहीं। पिता के पास में गया, पिता से पूछा, पिताजी ने कहा जैसे हमने तुमको बचपन में पाला पोषा, अब तुम्हारा कर्तव्य है पालन पोषण करना, तुम कहां से क्या करके लाता है इससे हमारे कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा पाप नहीं लेता। लौट करके वहां गया, जब वो गया तो उन्होंने कमंडल से पानी उठाया और उस पर ऐसे प्रोक्षण कर दिया, छिटक दिया। देखा जे जिन जिन जानवरों को जिन आदमियों को उसने मारा है वो सभी अस्त्र लेकर के उसे मारने के लिए तैयार, करोड़ों करोड़ों लाइन में खड़े हैं, करोड़ों करोड़ों उसको जन्म में लग जाएगा जान। वो गिर करके मूर्छित हो गया। उन्होंने फिर पानी छिड़का, देखा अब आप मेरे गुरु हैं, अब हमें बचाइए। मैंने कहा पहले ये धनुष को और इसको फेंक दो, और जो मैं ऐसा कहता हूं ऐसा करेगा, करेगा कहां जरूर करेंगे, तुम राम राम कहो, राम कहने की चेष्टा की तो राम नाम निकला नहीं, बहुत नहीं निकला। तब फिर उन्होंने कहा देखो तुम मरा मरा करता है, मारा 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 कोई मरा मरा कर तो ये कर सकता है, ये तो कर सकता है, मरा 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 उल्टाना उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान परम भगवत भक्त हो गए। राम के जन्म के पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी, और ऐसी सुंदर रचना की जो पढ़ेगा सो रोएगा उसको भक्ति हो जाएगी। इसलिए हम लोग तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कहां होता है, अभी होगा जब होगा तब, अभी तो कुछ होता नहीं। किंतु उसने गुरु उसके पक्के थे, भगवान के भक्त परम भक्त, इसलिए उसको मरा मरा कहा करके राम राम कहवा करके और उसको मुक्ति से भी बहुत आगे भगवत भक्ति उसको प्रदान की, जो बैकुंठ से ऊपर राम लोक में वो जाप चला गया। इसलिए नारद जी परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जैसा तैसा व्यक्ति भी उनका शरणागत होगा तो उसको मंत्र दे करके कहेंगे जय राम राम करो और उसको जगत से पार करा लेंगे। अजामिल मूर्ख ही नारायण नाम कहकर वो अपने बेटे के लिए कहकर के चला गया बैकुंठ में। और जब नारद जी कहेंगे जो तुम राम का मंत्र जपो आप देंगे और वो नहीं, उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होने के बाद भी बैकुंठ को भी पार करके वो अयोध्या में जाकर के हनुमान जैसी वो सेवा को प्राप्त करेगा, बल्कि हनुमान जी से भी ऊपर हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक तो गुरु ठीक है। गुरु ऐसा होना चाहिए कैसा? नारद कंस के दरबार में जाते हैं, कहते हैं कि अरे तू चुपचाप बैठा हुआ है, तू मेरा शिष्य है ना, देखो किसी देवकी के पुत्र को छोड़ना मत, न जाने कौन सा कृष्ण हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। आत्मा के बहाने मत रहो, यदि सातवें से गिनेगा तो आत्मा दूसरा हो जाएगा, और सातवें आठवें से गिनेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा। ये सभी
देवता
ही सब देवता मिलकर के षड्यंत्र किया है। आचार्य आप तो मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छा, आप मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उधर में वसुदेव जी को जाकर के कहा धैर्य से रहना, भगवान अब आने वाले हैं, तुम्हारी रक्षा जगत के गुरु हैं। उससे ऐसा कहा कि इसलिए जल्दी से उत्पात करेगा, भगवान आकर के जल्दी से मुक्ति दे देंगे, वो चला जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी को बात समझने वाले जगत में बहुत कम है। नारद जी के शिष्य प्रहलाद हैं, नारद जी के शिष्य व्यास हैं, नारद जी के शिष्य जगत के कितने लाखों लोग हैं। इसलिए नारद जी पक्के गुरु हैं। किंतु एक बात है, नारद जी को हम बहुत प्रणाम करते हैं, उनकी चरण की धूलि भी रखते हैं। हमें कृष्ण की भक्ति चाहिए, यहाँ पर राधा जी हो विद्यमान, हम और कुछ नहीं चाहते। हे नारद जी आप कृपा करिए, हमको ऐसा कोई गुरु मिले जो राधा जी के चरणों में ब्रज की भक्ति हमको दे सके। इसलिए नारद जी को छोड़िए, गुरु हैं ठीक है, राम की भक्ति दे सकते हैं, सभी कुछ करते हैं, नारायण की भी भक्ति दे सकते हैं, किंतु हमको इसकी आवश्यकता, हम कुछ दूसरे पद के भिखारी हैं। बतला दीजिए तो फिर आगे बढ़े, अब असली गुरु पर ले आएंगे। ये तो यंत्र खराब हो जा सकता है। समथिंग इज देयर, ठीक है।
सो लाइक नारायण, लाइक नारद मुनि कैन गिव यू
गोपी प्रेम, ही कैन नॉट गिव, ही मे गिव बट ही हैज नॉट येट गिवन
इट।
वेरी सिंपल एंड ऑफ नॉट ऑफेंस टू नारद।
सो
अब हम इससे थोड़ा सा और ऊपर उठिए। पहले इस चीज को समझा जाए, भक्ति कहते हैं किसको, भक्ति क्या चीज है। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी की कृपा से ये लिखा, अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्म आद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपतम। कृष्ण की वह सेवा जो कृष्ण को अच्छी लगी, जिसे वो प्रसन्न हो, जो चाहते हो, तन से मन से वचन से सब प्रकार से उनकी सेवा कैसी, अविच्छिन्न तैल धारावत, जैसे मधु की धारा होती है, ऊपर से गिराओ तो तार मन जाता है, कहीं कटता नहीं, वैसे चित्त की वह अविच्छिन्न गति जो कृष्ण के चरणों में सब समय लगी रहे, इसको कहते हैं भक्ति। किंतु उत्तमा भक्ति अभी नहीं है। उत्तमा भक्ति होने के लिए और दो गुण उसको चाहिए। क्या चाहिए? कोई भी कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त हमारे अंदर में कोई भी मांगने की इच्छा न हो, कुछ भी नहीं मांगेंगे, केवल कृष्ण की भक्ति बढ़े, भगवान का, कृष्ण का, गोपियों का, जितने भी भक्त हैं उनका आदर कर सकूं। इसके अतिरिक्त तो कोई कामना वासना संसार की मुक्ति की किसी चीज की न रहे। दूसरी बात, बिना कर्म किए हम जीवित नहीं रह सकते, बिना ज्ञान के हम जीवित नहीं रह सकते, किंतु ऐसा कर्म और ज्ञान नहीं होना चाहिए जो भक्ति को ढक दे, भक्ति का पोषक हो, भक्ति का सेवक हो। ऐसा नहीं ये भक्ति कोई ढकते, जैसे कर्म आपने यज्ञ खूब यज्ञ करो, जब ऐसा करना है भीतर बाहर में काला हो गया किंतु कृष्ण की भक्ति का गंध भी नहीं आया, उस तपस्या से क्या लाभ, उस यज्ञ से क्या लाभ। उसके बदले यदि हरे कृष्ण एक बार कह दें या राम कह दें, कृष्ण एक बार कहें जय राधे कह दो तो सबसे अच्छा, उसे भक्ति हो जाएगी, किंतु लाख वर्ष तक यज्ञ करने से नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और कर्म से भक्ति नहीं झांकना चाहिए। जैसे एक आदमी ने कहा कि हम 50 करोड़ का मंदिर बनाएंगे, कम नहीं 50 करोड़ का। अब ये 50 करोड़ रुपया संग्रह करना सहज है, अब जीवन भर करते रहो रुपया पैसा, हमें रुपये दीजिए, दांत निपोर करके हाथ जोड़ करके विषयी लोगों के पास में जाएं, जो मांस मछली अंडे गोश्त खाते हैं रुपया बनाते हैं उनके पास में। क्या जरूरत है तुम्हारे अंदर में मंदिर में, क्यों नहीं बनाता है यहाँ 17 लाख या 20 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए हम संग्रह करेंगे जीवन, उसमें क्या भक्ति कहाँ हुई। अरे भगवान का भक्ति के लिए हम मंदिर बना रहे हैं, अरे कर रहा है तू अभी करना, बिना मंदिर के भक्ति नहीं होती। महाप्रभु जी ने मंदिर बनाया और सब वैष्णवों ने मंदिर बनाया, अरे मैं दूसरों के लिए कर रहा, अरे तू पहले तो कर, तो दूसरों के लिए ठीका लेकर रखा है जगत भर का, तू ठीका लेकर रखा है तू पहले बना। तो स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी वैसे महापुरुष थे, उनको कुछ प्रयास ने कह दिया बस मंदिर बनेगा, बस मंदिर बन गया, लाखों करोड़ पे आ गया, तुम स्वामी जी बन गया, पहले स्वामी जी बन तब फिर ऐसा कर। जन्माष्टमी का त्योहार मनाए, 5 करोड़ रुपए का प्लान बनाया, 5 करोड़ से कम का नहीं, और लोगों से मांगने के लिए तरह तरह के ट्रिक पैदा कर लिया और एक वर्ष से लगे रह गए उसी में। 5 लाख रुपए की बिजली लगाई गई डेकोरेशन, और 10 लाख रुपया लगाया गया प्रसाद देने के लिए, और सब भक्त लोग आए उसको खिलाया पिलाया, तुमको क्या हुआ मिला। और वहां से वहां तक तो तुमको तो कृष्ण नाम करने की फुर्सत ही नहीं रही ना स्मरण करने का। एक आदमी क्या किया कि वो अपने घर में राधा जी का कृष्ण जी का मूर्ति रखा है, वैष्णव को बुला, आज हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं है भाई, आज तो उपवास रहेंगे, कुछ नहीं करना है, न सोएंगे, आज भागवत की कथा, भागवत की कथा होने लगी, कीर्तन होने लग गया, बस कृष्णमय वहां वातावरण हो गया, रात भर लोग कीर्तन करते रहे, हरि कथा सुनते रहे, कृष्ण की विविध लीलाएं रास इत्यादि प्रसंग की होते हुए सभी लोगों का चित्त भर गया, किसी को नींद नहीं आई। सवेरा हुआ गंगा जमुना में या किसी जगह में स्नान किया और फिर रात में जो भोग लगा था उसको उन्होंने पाया। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य मतांग राजन विश्वासो नहीं बजाए, ये कहा के मंत्र, और ये भगवान का उचित प्रसाद है महाप्रसाद, इसके खाने से हमारा संसार का सब रोग दूर हो जाएगा, और वो प्रसाद पाकर के आंखों से आंसू भर रहे हैं राधा कृष्ण का। ये अच्छा है कि वो अच्छा है 50 लाख करोड़ का वो जो प्लान जो बना जन्माष्टमी का, कौन सा अच्छा है बतलाइए आप ही लोग, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। कौन सा अच्छा, इसलिए इस सब पर विचार करना चाहिए। गुरु वर्गों ने हमारे कल्याण के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, किंतु अपनी सीमा से ऊपर मत जाओ, करो दूसरों को सिखाओ, दूसरों के लिए जन्माष्टमी करो, मंदिर बनाओ, ठीक है, सीमा के अंदर में रह करके, ऐसा ना करो कि तुम्हारी भक्ति ही बिगड़ जाए और दिन रात इसी में चले गए। एक आदमी के पास में गया, उन्होंने कहा जी हमको 1 लाख रुपया चाहिए, उन्हें हम 1 लाख रुपया नहीं दे सकते भैया, तू 50,000 दे, मैं 1 लाख रुपया लूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा सर्व